ओम शांति, ओम शांति। बाबा, इस समय हम बच्चों को नष्टो मोहा बनाने आए हैं। क्यों हमें नष्टो मोहा बनना है? क्योंकि परिवर्तन का युग आना है। परिवर्तन इस सृष्टि का अनिवार्य हिस्सा है, पर ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो कलयुग से सतयुग लाना है भगवान को, तो उसको आना ही पड़ता है। और युगों में आने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो अपने आप धीरे धीरे नीचे गिरावट में आते हैं। लेकिन ये बड़ा परिवर्तन है, मानो एक नया वृक्ष खड़ा करना है। लेकिन वो नया वृक्ष भी तो पुराने से ही नया बनेगा, तो एक डाली निकाल के फिर नया वृक्ष बनाते हैं। तो बाबा भी आकर के नए वृक्ष का कलम लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं? इस कलयुगी दुनिया से हमारा मोह नष्ट करके, क्योंकि मोह भी बहुत बड़ा विकार है, और वो विशेष माताओं में होता है ना मोह। भाइयों में, पुरुषों में लोभ ज्यादा होता है, पर माताओं में मोह ज्यादा होता है। तो बाबा कहते हैं शक्तियों का दल तैयार होना चाहिए, ऐसी शक्तियां हो जो नष्टो मोहा हो। और अगर देखा जाए सारी गीता का सार भी यही है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। मोह को नष्ट करने लिए ही सारा ज्ञान भगवान ने दिया। आत्मा का ज्ञान भी मोह नष्ट करने लिए है, परमात्मा का ज्ञान भी मोह नष्ट करने के लिए है, स्वर्ग का ज्ञान भी मोह नष्ट करने लिए है, क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है। तो आज की बाबा की मुरली है, ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। तो युद्ध होने से पहले भगवान ने ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान मोह नष्ट करने लिए। तो आज की बाबा की मुरली भी इसी प्रकार है। भगवान इतना बड़ा मेहमान बन के आया है, लेकिन कितना गुप्त है। दुनिया में कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो क्या नहीं बैंड बाजे बजाते हैं, क्या नहीं उनका आयोजन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भगवान जब आता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। तो देखो गुप्त रूप से भगवान अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते ये भी जरूरी है, नहीं तो सारी दुनिया आ जाए। और साधारण वेश में आते हैं, अगर श्री कृष्ण का सजा सजाया रूप हो तो भी सब पहचान जाए। तो भगवान के जो कार्य है वो भी निराले हैं। जो बाबा कहते हैं मैं खुद ही आकर बताता हूँ, तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 24/7/2026 है। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। तो लड़ाई लगने से पहले, पुराना झाड़ समाप्त होने से पहले नष्टो मोहा बनना है, और बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। और पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? माताएं ही ईश्वर का द्वार खोलेगी। माताओं को बाबा कहते आगे रखो, वो दल इतना मजबूत बन जाए तो स्वर्ग का द्वार खोलने में मददगार बने। लेकिन बाबा कहते उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। पूरा पूरा पुरुषार्थ देही अभिमानी रहने का करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। ऐसा नष्टो मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखावे। माताएं कमाल करके दिखावे, ऐसा नष्टो मोहा ग्रुप हो। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, किसमें भी लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है, तो नष्टो मोहा बनना ये बहुत जरूरी है इस महाभारत के युद्ध से पहले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आए हैं। सब स्वर्गवासी बनने लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है पवित्र बनने का, सहज उपाय याद की यात्रा। सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंद में है, रावण राज्य के बंधन में है। किसके बंधन में है? रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं कि सब रावण के बंधन में बंधे हुए हैं। ये बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं, और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन हमारा, हम भगवान खुद हमारा बन गया। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। किसको खुशी होती है? शरीर की बात नहीं है, किसको खुशी होती है? आत्मा को। आत्मा को खुशी होती है ना। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वो बाप मिला, तो आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख में बाप का सिमरन करते रहे हो। तुम भी सिमरन करते थे ना, सब सिमरन करते भक्ति मार्ग में। आधा कल्प से दुख में बाप का सिमरन करते हैं। अभी तुम दुखी होकर के सिमरन नहीं करते हो। भक्तों और ज्ञानी तो आत्मा में क्या अंतर है? भक्त तो दुखी होकर के सिमरन करते, हे भगवान शांति दो। हम दुखी होकर सिमरन नहीं करते, हम सुखी होकर खुश होकर प्रेम में भगवान को याद करते हैं। अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वो बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। एक बात बाबा बार बार समझाते हैं, क्या? यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, शिव बाबा आ गए ब्रह्मा तन में, शिव बाबा परम धाम से आया हुआ है। कल्प पहले, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा को ये, बाबा की ये प्रतिज्ञा है, हम प्रतिज्ञा करते बाबा से तो बाबा भी तो प्रतिज्ञा करते ना, तो बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं आता हूँ। जब तुम इतना पुकारोगे, आधा कल्प पुकारोगे, तो मैं, मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। क्यों क्यों आना पड़ता है? एक तो तुम पुकारते हो आधा कल्प तो आना पड़ता है, फिर दूसरा क्यों क्यों आना पड़ता है? क्योंकि कलयुग के बाद सचिव होना है तो इसीलिए आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, है ना, तभी तो इतनी वृद्धि हुई है, इतना दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो जानते हो कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, बाबा बाबा बच्चे कहते हैं, हम शिव बाबा के पास आए हैं तो शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मौफिक। ये भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? शिव बाबा आया है कल्प पहले मौफिक, साधारण तन में। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना है, ऐसी याद भी माया भुला देती है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है, पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन। कौन पुकारता है? आत्मा, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। मधुबन क्यों आते हैं? सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आईजान के लिए बैंड बाजे आदि भी बजाते हैं, खुशी के बैंड बाजे बजाते हैं। अब ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है ये तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। शिव बाबा दूर देश का रहने वाला मुसाफिर आया हुआ है। तुम जानते हो हम आत्माएं भी परम धाम के रहने वाली है, हम भी उसी दूर देश से आए हैं। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। तो एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, हाँ तो बाबा कहते हैं कोई नहीं जानते और तुम बाप से सुन रहे हो, वो अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो तुम सुन रहे हो और दुनिया नहीं जानती तो तुमको कितना अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो, ये इस कर्म क्षेत्र में सब मुसाफिर हो। हम शांति धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं, आखिर ये अंत का समय है, अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हो रहा है, ये आखिरी समय है। तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने, ये भी तुम जानते हो, चित्रों में भी कितना क्लियर है ना। कल्प वृक्ष का चित्र है, नीचे जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे भी है थोड़ा थोड़ा, और वो दिखा कैसे उस पुराने से फिर नए झाड़ का कलम लगता है। ब्रह्मा बाबा सरस्वती सब नारियां कैसे जड़ में बैठी है नई वृक्ष की उत्पत्ति करने। तो बाबा कहते हैं ये बात, तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने, ये भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं, क्योंकि देखो बाबा क्या राज समझाते हैं, ऐसे तो नहीं श्री कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं, श्री कृष्ण को या विष्णु को उसके द्वारा स्थापना करते, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं करते, विष्णु द्वारा तो पालना करते, पर स्थापना किसके द्वारा करते हैं, ब्रह्मा द्वारा। तो ऐसे तो नहीं श्री कृष्ण द्वारा या विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं, बाप आते हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। तो बाप आए हैं साधारण तन में, लेकिन क्यों श्री कृष्ण का फिर नाम डाल दिया है, बाबा को भी आश्चर्य लगता है, जबकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो गीता का ज्ञान ब्रह्मा द्वारा देते हैं नई दुनिया के लिए, तो फिर विष्णु द्वारा कैसे गीता का ज्ञान बता दिया या श्री कृष्ण द्वारा बता दिया। बाप आए हैं साधारण तन में, ये है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है, जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनाइस्टी सहित केवल एक राजा रानी नहीं, महाराजा महारानी नहीं पतित बनते, सारी राजधानी सब पतित बनती है, इस समय सारी डिनाइस्टी सहित पतित बनते हैं। तुम जानते हो हम जो देवती धर्म वाले थे, देवता धर्म वाले थे, अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका भी कुछ भी नहीं है। अमेरिका जाने की कितनी होड़ लगती है, पर बाबा कहते हैं जो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं उस स्वर्ग के भेद में अमेरिका भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब पिछाड़ी में बने हैं। अमेरिका को बने कितने 500-600 साल ही तो हुए, उसके पहले थोड़ी थी अमेरिका। तो बाबा कहते ये सब पिछाड़ी में बने हैं, ये अल्पकाल का भबका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए, बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है, बाबा को वंडर लगता है वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं और हम क्या कहते हैं, बाबा हम आपको याद नहीं कर सकते, इतना कुछ हमें बाबा देते तो भी याद नहीं कर सकते, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती, क्यों नहीं याद कर सकते है, माया विघ्न डालती है, याद करने नहीं देती है। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, माया विघ्न डालती है तो तुम बच्चे क्या कहते हो, तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है, फिर ये शिकायत माया की बाबा को करते हो कि बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा को देखो, फिर बाबा क्या जवाब देते, अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। बच्चे शिकायत करते हैं बाबा माया याद करने नहीं देती है, तो बाबा क्या कहते हैं, अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते हैं। फिर बाबा स्वर्ग की महिमा करते, आकर्षण देते हैं ना कि बच्चे हाँ तुमको मैं ऐसा बनाता हूँ, सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। अभी भी देखो क्या हालत है दिल्ली में, क्या हो रहा है, यहाँ युवा पीढ़ी कितना आक्रोश मचा रही है। जो भी है जो कुछ कर रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कितनी चिंता होगी कि क्या हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है, लड़ाई आदि में भी कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, उसमें तो सब मरेंगे ना, सारी कौरव सेना मर जाती है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसकी बुद्धि में नहीं है। कैसे विनाश हुआ उस महाभारत युद्ध के बाद, सब खत्म हो गया, फिर नई दुनिया कैसे आती है। बाबा कहते हैं किसको भी बुद्धि में नहीं है, तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। वो थोड़ी ऐसे समझते हैं कि फिर नई दुनिया आनी है, तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए, सारे कौरव सेना मर गई। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ तो पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब दीटी धर्म था, देवताओं का धर्म था, तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवता धर्म था, अब तो कितनी वैरायटी धर्म है। सारा झाड़ बुद्धि में लाओ, कल्प वृक्ष, अभी तो कितने वैरायटी धर्म है। फिर उसके बाद अंत में तो टाल टालियां, छोटी छोटी डालियां, हाँ वो भी मठ पंथ समाज न जाने क्या क्या कितनी हो जाते हैं। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है। हाँ जो भी ये छोटी 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 डालियां बनती है, बाबा कहते हैं सब का विनाश होना है। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं, भले कहेंगे ये वही लड़ाई है, कहते भी है ये वही महाभारत लड़ाई है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि इसके बाद नई दुनिया आनी है। भले कहेंगे कि ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं है। बड़ी लड़ाई लगेगी, इसके बाद क्या होगा, बाबा कहते ये कोई को पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले ले रहे, अपना वर्षा ले लो। महाभारत लड़ाई, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने से पहले अपना वर्षा ले लो बाबा से। बाबा कहते हैं बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो, बस यही है बाप से वर्षा लेने का आधार। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार भी होते हैं, मार खाती है ना, तो मार खाती है तो अत्याचार होते हैं। तो माताओं का संगठन ऐसा होना चाहिए जो एक दो को बचाए, माताओं को बचाए। उस समय शुरू शुरू में यज्ञ में भी ऐसा ही हुआ ना, बहुत मार खाती थी, तो फिर जो छुटेली थी ना, उनको बाबा कहते थे कि आप ऐसी युक्ति रचो जो आप इनको बचा सको, उनको कम से कम मुरली तो भेजो, तो कब वो मुरली से जिंदा रहेंगे। हाँ तो मनोहर दादी बहुत अनुभव सुनाती थी कि कैसे वो चिमनी पर चढ़ जाती थी, और चिमनी माम हैदराबाद में चिमनी बहुत होती थी, तो वो चिमनी से मुरली भेजती थी और वो मुरली पकड़ लेती थी और पढ़ती थी, तो क्योंकि मुरली सहारा थी। तो बाबा कहते हैं तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु उसके लिए क्या होना पड़ेगा। परंतु उसके लिए देही अभिमानी जरूर बनना पड़ेगा। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे, जो खुद ही डरपोक होंगे वो क्या समझा सकेंगे, जो नशे में होंगे वही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ये नशा तो रहना चाहिए ना। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी समझाते रहो। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। पावन तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन उसके लिए पवित्र बनना है। काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु को जीतना माना पवित्र बनना। फिर सारे विकारों को जीतना, सारे जंक उतर जाए, शुद्ध हो जाए, तब कहेंगे पावन। तो पहले पवित्र बनते हैं, विकारों को जीतते हैं, फिर याद में रहकर सारे पाप नाश करते हैं, तब पावन कहलाते हैं। तो बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते हो मधुबन किस लिए? बाबा कहते हैं, मधुबन में तुम आते हो रिफ्रेश होने, आत्मा में शक्ति भरने, बादल भरने, बैटरी चार्ज करने, है ना। तो यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, तो मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, अंडरलाइन, कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, इस शरीर में भी मोह न रहे। औरों में तो मोह न रहे, पर अपने शरीर में भी मोह न रहे। ये तो क्या है, ये पुराना शरीर, ये पुरानी चमड़ी है, पुरानी चमड़ी है। परंतु फिर बाबा कहते हैं, पुरानी चमड़ी के कि नष्टो मोहा बनाते हैं, परंतु फिर बाबा ये भी कहते, इसकी संभाल भी रखनी होती है ना। पुरानी चमड़ी है तो छोड़ नहीं देना है, संभाल भी रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, अगर बिस्तर पर पड़े रहेंगे, मुरली भी नहीं होगी, पढ़ भी नहीं सकेंगे, तो फिर फायदा क्या। इसीलिए कम से कम शरीर की संभाल हो, जो हम पढ़ाई भी पढ़ सके। तकलीफ होती है तो चट्टी लगानी पड़ती है, चट्टी लगानी पड़ती है ना। ऑपरेशन होता है तो आजकल तो चट्टी लगाते हैं, टांगों की चमड़ी ऊपर लगाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में भी बहुत कुछ करते तो चट्टी लगाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, तकलीफ तो होती है तो चट्टी लगानी पड़े। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ न कुछ होता रहता है। दुख तो आत्मा को होता है ना, वास्तव में भले शरीर का है, लेकिन दुख तो उसका आत्मा को होता है। जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है, योग बल से इसको थमाना है। बाप को याद करते रहना है। कैसे थमेगा योग बल से? जब चिंताओं से मुक्त होंगे, दुखों से मुक्त होंगे, तभी तो थम सकेगा ना। अगर चिंताएं करते रहेंगे तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, तो ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, पर सब चिंता से कारण। तो इसीलिए थमाना है शरीर को, तो चिंताओं से मुक्त होना होगा। तो बाबा कहते हैं, जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस, और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आना चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ, तो बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। हमको पता है कि आत्मा जब पवित्र होगी तभी शरीर अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बनती है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने 84 जन्म लिए। जो शुरू शुरू में सूर्यवंशी में आए सब ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, चंद्रवंशियों के लिए भी 84 जन्म किन के लिए कहेंगे? हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे। राजा रानी जो बनते हैं, रॉयल फैमिली जो होगी, वो तो लेंगे 84 जन्म, परंतु जो दास दासी बनते होंगे वो फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं। आप मर्तबा पाते हैं, सत्युग में भी वो 84 जन्म लेंगे, परंतु उनको राजाई पर थोड़ी मिल जाएगी त्रेता में, तो वो भी 84 जन्म पाते हैं। वो फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके भी 84 जन्म कहेंगे, क्योंकि सूर्यवंशी में पहले आए तो दास दासी के रूप में आए, तो भी 84 जन्म तो लेंगे ना, उनके भी 84 जन्म कहेंगे। तो राजा रानी प्रजा या जो भी दास दासी आदि सूर्यवंशी में आते हैं वो 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए, ऐसे ऐसे गुह्य बातें बाबा कहते हैं अपने से करनी चाहिए। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तो विचार सागर मंथन करना चाहिए, जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो, अब क्या समझो, चलते फिरते भी बुद्धि में क्या समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। अब ये नशा चढ़ाओ, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वर्ग का मालिक बनाने लिए बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कई अपना कार्ड बनाते ना, ब्रह्मा कुमार बीकेज लिखते हैं उसमें, अपना अपना कार्ड भी दिखा सकते हो। कहां ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे ये बीके क्या लिखा है आपने, बीके का मतलब क्या, उनको समझ में नहीं आएगा आपने अपना कार्ड जो बना उसमें बीके नाम लिख दिया। परंतु किसी को दो वो कहेगा ये बीके का मतलब क्या है, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी ये फैमिली है, हम बीके क्यों कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा है, ब्रह्मा दादा शिव बाबा, दादा या ये दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, शिव बाबा का वर्षा हम इस दादा द्वारा ले रहे हैं। ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है ना, ग्रैंडफादर की है, फिर ये बाप बना वो ग्रैंडफादर बना, या ये बाबा कहते केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो पिता तो हमारा शिव बाबा है, तो दादा और बाबा, बाप दादा, ये हमारा कोड वर्ड है ना। तो बाबा कहते हैं मिल्कियत तो दादे की है, पोत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, ये बाप का फर्ज है, बाप का फर्ज है पढ़ाना। तो तुम बच्चों को पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। बच्चों की पालना करना तो बाप का फर्ज होता है। जब तक कुमार कुमारी या बालिग न बने, बालिग माना 18 साल की उम्र तक न आए, तब तक फिर माँ बाप को ही उनकी संभाल करनी होती है। फिर 18 साल से ऊपर हो गया तो वो कहेगा मैं तो अभी तो मैं बालिग हो गया हूँ, अभी तो आगे बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने पांव पर खड़ा रहूँ। तो बाबा कहते हैं जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने, हाँ बालिग से पहले सगीर, बाबा कहते 18 से कम है तो सगीर है, फिर 18 साल की उम्र हो जाती है तो फिर बालिग कहलाते हैं। तो जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने बाप को उनकी संभाल करनी है। तो बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। अब ये भी कितनी अच्छी बात है, 18 साल की उम्र हुई, कुछ नौकरी वोकरी करते तो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी ये पढ़ रहे हो फिर जाकर तुम अपने पैरों पर खड़े होंगे। कहाँ अपने पैरों पर कहाँ खड़े होंगे? हम सतयुग में, क्योंकि यहाँ जो हमने कमाया वो हम वहाँ खाएंगे। तो मानो अपने पैरों पर खड़े होंगे तभी तो खाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। वो भी माँ बाप भी तो ऐसे ही बच्चों को कहते पहले अपने पैरों पर खड़े रहो, शादी आपको करनी है लेकिन पहले अपने पैरों पर खड़े रहो। वो भी कहेगा मैं अपने पैरों पर खड़े रहूं तब मैं फिर और करूंगा कुछ। तो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी या श्री नारायण बनने, ये सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भक्त होंगे तो राधे के भक्त क्या कहते हैं, राधे हाजरा हजूर है। जो जिसके भक्त होंगे वो उस इष्ट के लिए कहेंगे ये हाजरा हजूर है। तो राधे हाजरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, शिव ही शिव। तो शिव के भक्त होंगे कहेंगे शिव ही शिव सब जगह, श्री कृष्ण के भक्त होंगे कहेंगे श्री कृष्ण ही कृष्ण सब जगह। ये गुड़ गुड़दानी कर दी है, गुड़ गुड़दानी। हाँ गुड़दानी होती है ना, वो चिक्की बनाते हैं ना दिवाली पर देते हैं अलग अलग चीजों की। तो पहले तो गुड़ को पकाना होता है, फिर गुड़ को जब पकाते हैं वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है, फिर उसमें कई चीजें डालते हैं, बादाम भी डालेंगे काजू भी डालेंगे कुछ भी कई डाल चीजें डालते तो वो क्या बन जाते, गुड़दानी बन जाती है। तो सब एक है, श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, श्री राधे हाजरा हजूर है, शिव हाजरा हजूर है, सब हाजरा हजूर है। तो गुड़ गुड़दानी हो गए, सब एक ने मिला दिया। तो बाबा कहते हैं ये गुड़ गुड़दानी कर दी है। ईश्वर राधे श्री कृष्ण सब सर्वव्यापी है, अब सारे सर्वव्यापी हो गए, ये सब ईश्वर के रूप है, यही समझ लेते हैं। भगवान ने ये रूप धारण किए हैं, राधे का रूप कृष्ण का रूप, ये इनका रूप उनका रूप। तो बाबा कहते हैं वो क्या समझते हैं, भगवान ने ये सब रूप धारण किए हैं, जिधर देखो उधर तू ही तू है, बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। ये है विकारी पतित दुनिया, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहां बच्चे कैसे होते हैं, अगर विकारी नहीं बनेंगे तो बच्चे कैसे होंगे, वो कैसे पैदा होंगे, बस सवाल ही ये पूछते हैं और बातें नहीं पूछते हैं। स्वर्ग के लिए बच्चे कैसे पैदा होंगे यही पूछते हैं। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल देखो आदम शुमारी का हिसाब निकालते हैं, निकालते हैं ना, जनसंख्या की गिनती निकालते हैं कि कितने जास्ते मनुष्य हुए, पर ये नहीं बताते कि कितने मरे, मरे कितने वो नहीं बताते हैं, कितनी वृद्धि हुई वो बताते हैं। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है, मैं आत्मा हूँ पहले तो ये निश्चय करो, बाबा को याद करना है, अंत काल जो नारायण सिमरे, वो है ना, अंत काल जो धन सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे तो सर्प योनि वलवल उतरे, अंत काल जो पुत्र सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे सुकर योनि वलवल उतरे, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे वैश्याजून वलवल उतरे, फिर अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे वो मुक्ति को पाए। हाँ, तो फिर नारायण सिमरे, तो देखो बाबा नारायण सिमरे के लिए क्या कहते हैं। इस पर बाबा ने एक मुरली में सुनाया था कि बाबा को ये गुरु ने बताया कि अंत काल जो नारायण सिमरे, फिर वो उसका भी वो कहानी आती है ना, किसकी, ये जो बहुत अजामिल जैसा पापी, तो अजामिल तो बहुत पापी था, बहुत बच्चे पैदा करता था, भगवान को तो याद ही नहीं करता था, तो उनको क्या कहा कि उनको कहा अभी हम उसने कहा हमको मुक्ति चाहिए, तो अजामिल उनको बच्चा होने वाला था, तो उस तो गुरु ने कहा कि इस बच्चे का नाम नारायण रखो, तो अंत में उसने नारायण नारायण का याद किया बच्चे को, उसके बेटे का नाम नारायण था, बच्चे को याद किया, लेकिन उस नारायण ने भगवान ने समझा ये मुझे याद कर रहा है। तो बाबा ने ये मिसाल दिया अपने लिए ब्रह्मा बाबा ने कि उनको भी जो बेटा पैदा हुआ नारायण दादा, वो उनका बेटा था, लास्ट बेटा था, तो बाबा ने उसका नाम नारायण रखा था कि अगर मैं शरीर छोड़ूं तो नारायण की याद में छोड़ूं। तो बाबा कहते हैं तो जो गायन है अंत काल जो नारायण सिमरे, वास्तव में ये अक्षर झूठे लिखे हैं, तो बाबा उसको झूठ सिद्ध कर रहे हैं। क्यों? अंत काल जो शिव बाबा सिमरे ये होना चाहिए, नारायण सिमरे नहीं, किसको याद करना है अंत में, शिव बाबा को। तो अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। देखो बाबा उस वाक्य को करेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे तो वो स्वर्ग का नारायण बने। अंत काल नारायण क्यों कहते हैं, अब ये भी देखो बाबा राज समझाते हैं, अंत काल जो नारायण सिमरे ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि समझते श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, इसलिए वो ही भगवान है, इसीलिए नारायण को कृष्ण को उनको याद करते हैं, क्योंकि गीता का नाम, गीता में श्री कृष्ण का नाम दे दिया, तो समझते श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना, क्योंकि उसी ने ज्ञान दिया, वही भगवान है, तो इसलिए श्री नारायण को सिमरे। अब श्री कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का तो किसको पता ही नहीं है, नारायण को क्या याद करते, श्री कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का तो किसको पता ही नहीं है, श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, नारायण की जयंती तो कभी नहीं मनाते हैं, भला राधे की भी जयंती कहाँ गई, मनाते ना राधा अष्टमी भी मनाते हैं, तो राधे की भी जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ मनाते हैं, वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का तो किसको पता ही नहीं है, सारे विश्व के वो महाराजा महारानी है, ये बाबा कहते हैं इनके बारे में, लक्ष्मी नारायण के बारे में किसको पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, पहले तो ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे, फिर जाके नारायण बनते हैं, वो कहाँ गए, हाँ, जो ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण दिखाते हैं वो कहाँ गए, कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। कोई भी ब्राह्मण गुजरेगा ना, उसको चोटी होती है, कहेंगे ये ब्राह्मण है, तो खाली ब्राह्मण नहीं, कहेंगे ब्राह्मण देवताय नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना ब्राह्मण, तो बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं स्थापन किया, ब्रह्मा तो माध्यम बने, उनके मुख से शिव बाबा ने ज्ञान दिया और फिर ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा परंतु शिव बाबा ने रचा। ये तो अभी ब्रह्मा बना है, पहले थोड़ी ब्रह्मा था, इनका तो लौकिक नाम दादा लेखराज था, पर शिव बाबा ने प्रवेश किया तब ब्रह्मा बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है, मोह नहीं रखना है। दूसरा, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन अनजान पने का, मास्टर नॉलेजफुल बन अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। अनजान पना माना जानते नहीं, मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। मास्टर नॉलेजफुल हो गए तो हम ये बात नहीं जानते ऐसे नहीं कहेंगे, किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वो ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं कि हम नहीं जानते हैं, कि इस बात का हमें पता नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता है। मुझे पता नहीं, बाबा कहते ये ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान स्वरूप बच्चे नहीं कह सकते, और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, ये भी जानते हैं योगी आत्मा ज्ञानी तो आत्मा बच्चे। माया भी बड़ी रौनकदार है, बहुत रौनक है माया में, इसलिए उससे बचकर रहना है, ये भी ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा समझते हैं। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है, क्योंकि माया को समझ गए हैं। ज्ञानी तो आत्मा ऐसे नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, मैंने ये माया है मैंने समझा नहीं, सब समझ गए तो फिर उनके लिए हार खाना असंभव है, जब सब समझ जाए तो। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न चित है वो कभी प्रश्न चित नहीं हो सकता, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रश्न चित से प्रसन्न चित की यात्रा। प्रश्नचित है पर धीरे 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 वो प्रश्नचितपना छूटता जाता और प्रसन्नचितपना आता। जो सदा प्रसन्नचित है वो कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो, उसके लिए बाबा कहते हैं योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट, ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, ज्ञान की लाइट और योग की माइट, ये दोनों ज्ञान योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को एक सेकंड में पार कर लेती है, टाइम नहीं लगता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, नीचे से कोई बहने आई है क्या? भाई बहने कोई